ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री राधाष्टमी के राधा रानी के दिव्य आविर्भाव कृपामय आविर्भाव करुणामय आविर्भाव के लिए आप सबको हार्दिक बधाई है, हार्दिक धन्यवाद है। और राधा रानी भक्ति देने वाली है, भक्ति का उगम है, करुणा निधान करुणा का सागर है, कृष्ण से भी कई गुना अधिक करुणामयी है। ऐसे श्री राधा रानी की करुणा आप सबके ऊपर आज वर्षा उसका हो, ये हमारी हार्दिक प्रार्थना है। तो मुझे कहा गया है कि ऐसी कहानी सुनाइए जो पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन ये सारी कहानियां जो है वो 5000 वर्ष पहले हुई है, तो जरूर किसी न किसी ने सुनी होगी निश्चित रूप से। लेकिन देखता हूँ कैसे मुमकिन होता है, हो सकता है कुछ आपने सुनी नहीं होगी, हो सकता है कुछ सुनी होगी। लेकिन कौन सी भी कहानी राधा रानी की नई नहीं होती है, सब कहानी पौराणिक होती है, एंशिएंट होती है। और जब कृष्ण भगवान राधा रानी यहाँ पर थे उस समय ये सारी कहानियां संपन्न हुई है। जब हमें पता चलता है तो वो नई बन जाती है, लेकिन वो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो सबसे पहले राधा रानी के लीलाओं को श्रवण करना करने के आरंभ करने के पहले एक बात बहुत जरूरी है समझना कि राधा रानी की जो कृष्ण भगवान के साथ जो लीलाएं हैं वो एक बहुत ही गोपनीय गुप्त विषय है, और बिना हमारे हृदय की मन की आत्मा की तैयारी किए हुए उसको समझने में हम योग्य नहीं बनते हैं। तो देखना यह है कि हम अपनी साधना बहुत अच्छी तरह से करें, नियमों का पालन करें, रोज सवेरे केवल जप न करें, लेकिन राधा रानी और कृष्ण को पुकारें, केवल जप न करें, केवल हमारे राउंड्स पूरे न करें, उनको पुकारें, संबोधन करें, राधे हरे कृष्ण। और फिर दास्यता का भाव, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुभाव, वैष्णवों के सेवक बने, कृष्ण के सेवक बने, राधा रानी के सेवक बने, जहाँ वैष्णवों की सेवा मिले वहां पर उसको दिल से करते रहे, तब जाकर हमारी आत्मा की योग्यता होती है जो हम कृष्ण को राधा रानी की लीलाओं को सुनने के लायक होते हैं, उसके बाद समझने के लायक होते हैं, उसके बाद साक्षात्कार करने के लायक होते हैं, उसके बाद अमल करने लायक होते हैं। और एक प्रवृत्ति है याचक प्रवृत्ति यानी भिक्षुक प्रवृत्ति। तो बरसाना में प्रवेश करना है राधा रानी के क्षेत्र में, उन लीलाओं के क्षेत्र में, उन लीलाओं में अगर श्रवण के एरिया में प्रवेश करना है, हम लोगों को भिक्षुक प्रवृत्ति का स्वीकार करना होगा। मतलब हम लोग कोई पढ़े लिखे अच्छे घर के डॉक्टर धनवान ऐसे उच्च जाति के उच्च कुल के ऐसे कुछ भी हम लोग है वो सब कुछ भूल कर हम लोग केवल एक भिक्षुक हैं, एक याचक हैं राधा रानी के चरणों में, तो उस भाव से हमको इसमें आना होगा। राधा रानी के धाम में जाने के पहले ये भिक्षुक भाव ग्रहण करना होगा। कारण उसका यह है कि हमको लोग बहुत मुश्किल लगता है, हाउ कैन आई बिकम अ बेगर, हाँ मैं भिक्षुक कैसे बन सकता हूँ, मैं तो अच्छा खासे घर का हूँ। लेकिन जो दौलत हम अपने साथ ले नहीं जा सकते, जो हमारी इज्जत या हमारा मान सम्मान हमारे साथ हम लेके नहीं जा सकते हैं, जो हमारा कुल, जो हमारी विद्या हमारे साथ हम लेके नहीं जा सकते हैं, वो हमारी होती ही नहीं है, और सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है और सब कुछ इस शरीर के साथ समाप्त होने वाला है। तो एक तरह से हम भिक्षुक ही हैं, जैसे वामन देव ने बलि महाराज के सर पे पांव रखा, उसके पहले दो कदम पे पूरा सब नाप लिया था उन्होंने, यानी कि जो भी बलि महाराज को लग रहा था कि मेरा है वो सब एक दो कदम में ही वामन देव ने नाप लिया और एक एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड शब्दशः बलि महाराज भिक्षुक बन गए, एकदम भिखारी बन गए। तब जाकर वो बलि वामन देव की जो कृपा थी उसको ग्रहण करने में एकदम परफेक्ट हो गए, तब जाकर उनको पूरी तरह से 100% वामन देव की कृपा जो है वो पूरी प्राप्त हुई। तो वैसे ही ये हमारा ये जो ग्लास है, देखो अभी हम इसमें पानी पीते हैं ना, ये ग्लास अभी खाली है ना तो ही इसमें कुछ नया शरबत आ सकता है। अगर भरा हुआ ग्लास होगा, एक ही ग्लास होगा तो शरबत आएगा, अमृत आएगा तो भी इसमें डाल नहीं सकते। इसलिए पहले अपने हृदय से हमको सब कुछ रीता करना होगा, एम्प्टी करना होगा, फिर राधा रानी की कृपा के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी और वहां पे कृपा आएगी भी। तीसरी बात है कि राधा रानी की कृपा लीलाओं को सुनना कैसे है, एक सेवक भाव से सुनना है कि हम उन लीलाओं का सेवा कर रहे हैं उसकी लीला की, क्योंकि लीला भी भगवत स्वरूप है। नाम रूप लीला और धाम ये भगवान से अभिन्न है और भगवान लीला स्वरूप भी है, नाम स्वरूप है और रूप विग्रह स्वरूप है और धाम स्वरूप है, और भगवान की लीलाएं भगवान से भी अधिक दयालु होती हैं। तो उनका श्रवण जो है वो सम्मान के रूप में सुनना चाहिए। We must hear the pastimes of the Lord in the mood of awe and reverence in a respectful manner. ये नहीं कि उसको मनोरंजन के रूप में हम देखें कि भाई अच्छा लगता है बहुत सुनकर, मन बहल जाता है, बहुत अच्छा उत्साह आता है मन में, ये मन बुद्धि के उत्साह के लिए या मनोरंजन के लिए, बुद्धि रंजन के लिए इन कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए। केवल आत्म उन्नति, आत्म शुद्धिकरण और सेवा भाव से इनका श्रवण करना चाहिए। और कभी भी इन लीलाओं को, जैसे कहते हैं ना कि चीपली लेना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट टेक दिस कथा चीपली, क्योंकि वो चीप कथाएं नहीं है, वो बड़ी दिव्य कथाएं, हमारे वो जड़ बुद्धि को वो चीप लग सकती है, सामान्य लग सकती है, सर्वसाधारण लग सकती है, लेकिन हम सबको ये पता होना चाहिए कि राधा कृष्ण के बीच में कुछ साधारण चीज होती नहीं है, सब चीजें दिव्य होती है, और उन दिव्यता के स्तर पर हम समझेंगे तो उसका पूरा लाभ कृपा आपको प्राप्त हो सकता है। तो राधा रानी का व्यक्तित्व जो है वो, उनका जन्मदिन है, वो सबसे बड़ी उनकी देन जो है दो चीजें हैं, एक वो कृष्ण के लिए असीम अमर्याद प्रेम करती है उनको संतुष्ट करने के लिए, और जीवों पर परम करुणा करती है। वही जो प्रेम है उनका कृष्ण के ऊपर का, वही कृष्ण के प्रेम का रूपांतर हमारी ओर जब मुड़ती है तो वो करुणा में हो जाता है, और वो अपार करुणा, जो अपार प्रेम कृष्ण पर है वो अपार करुणा के रूप में हमारे लिए प्रकाशित हो जाता है। इसलिए वो राधा कुंड पे कहानी है कि राधा रानी बहुत जल्दी जल्दी चल के जा रही थी तो पैर में कुछ खट से लगता है उनको, तो राधा रानी ललिता से पूछती है कि क्या हुआ, तो ललिता कहती है कि अरे वो एक मादा सुअर जो है उसका देहांत हो गया अभी और उसका शरीर का एक हिस्सा आपके पैर को लग गया। तो राधा रानी मुड़के देखती है वो मादा सुअर का शरीर जो वहां पड़ा हुआ है और कहती है कि ले लो उसके अपने पार्षद में ले लो। तुरंत वो जो मादा सुअर है वो तुरंत राधा रानी के सखी वृंद में उसका उद्धार हो जाता है। तो मादी सुअर क्या है, वो योनी सबसे गिलौनी योनी है, नीच योनी है, लेकिन राधा रानी की नजर कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है वो कहां से कहां उसका उद्धार हो जाता है। वैसे ही वो एक लोमड़ी थी शी जैकल, वो शिमखोर नाम की जगह है राधा कुंड घेरे में, वहां पर सब ब्रजवासी बालक उनको तंग कर रहे थे और हम जानते हैं उस कथा को, और उसको इतना परेशान किया बेचारे लोमड़ी वो गड्ढे में घुस गई अपने आप को बचाने के लिए। तो बच्चों ने वो गड्ढे के ऊपर सब डाल के कचरा डाल के वो जला दिया, उसको अग्नि प्रज्वलित कर दिया। वो इतना मरणांतिक आकांत कर रही थी, उसका इतना हृदय भरा जो दर्द भरी आवाज जो है वो राधा कुंड में राधा रानी को सुनाई पड़ी। बोली ललिता श्याम साहब देखो कौन रो रहा है, उनको किसी का रुदन रोना सहन नहीं होता है। वो जाते हैं देखते हैं तो वो बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं, तो तुरंत वो अग्नि को हटा के वो लोमड़ी को मुक्त करते हैं और वो राधा रानी के पास लेके आते हैं। तो राधा रानी तुरंत कहती है ले लो उसको अपने पार्षद में ले लो। तुरंत वो श्री जाखल जो मादी लोमड़ी है उसको अपनी सखी बना लेते हैं। कहते राधा कुंड ऐसा एक स्थान है जहां पर कृपा का वर्षाव घनघोर वर्षाव सदैव चलते रहते हैं सदैव। बस कहते हैं ना वो नल खुला हुआ है बड़ा बड़े गेज वाला, अपना बाल्टी बर्तन जो भी है वो तैयार रखो, जब भी वहां जाओगे तब तक वर्षा होगा। हाँ कृपा से अपना लोटा बाल्टी भर जाएगा, ऐसा वो स्थान है, परम करुणा का स्थान है। राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती है वहां पर, हर रोज वहां पर एक श्याम कुंड है, वहां पर श्याम राधा कुंड के बाजू में श्याम कुंड में पंच पांडव घाट है और पंच पांडव में पांच पांडव वहां पर पेड़ के रूप में भजन करते हैं, तो उस घाट को पंच पांडव घाट कहते हैं। उधर रोज सवेरे 11:48 पे वो आती है और वो अपने 64 सखियों के साथ स्नान करती है, और उसके आगे वाला उसका आगे का किनारा जो है उसको कहते हैं पाशाखेला घाट। तो पाशाखेला घाट का लीला ऐसा है कि पाशाखेला घाट श्यामकुंड में है और पाशा यानी चौसर का खेल द्यूत क्रीड़ा वो खेलते हैं उधर बैठ के। और कहते हैं कृष्ण भगवान ना चीटिंग 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 करके राधा रानी को हर गेम में हरा देते हैं, लेकिन पाशाखेला में उसके साथ में कौन होती है, चंपकलता देवी। और चंपकलता देवी है ना द्यूत क्रीड़ा में बहुत एक्सपर्ट है, तो उसके सहारे वो कृष्ण को परास्त कर देती है। तो पाशाखेला घाट पे श्यामकुंड पे कृष्ण परास्त हो जाते हैं। तो आज चंपकलता का भी जन्मदिन है, आज विशाखा देवी का भी जन्मदिन है और राधा रानी का भी जन्मदिन है। तो थोड़ा सा आपको उनके बारे में संक्षिप्त में बताते हैं कि ये जो विशेष गोपियां हैं ये इनकी क्या क्या सेवा है। देखिए करेला गांव में चंपकलता का जन्म हुआ था, जहां पर भगवान झूला झूलते हैं, रास रचाते हैं और चंपकलता के साथ विवाह भी करते हैं, और महारास का कंकण जो है वो करेला गांव में कृष्ण को बांधा गया था रासलीला के आरंभ के पहले। तो ये चंपकलता देवी बहुत गायन में बहुत ही निपुण है, द्यूत शास्त्र की महापंडिता है, चामर सेवा करने में बहुत उत्कृष्ट है और मिट्टी के तरह तरह के बर्तन फूल आदि बहुत नक्शिकाम के जो वस्तुएं हैं मिट्टी से बनने वाली उसको बनाने में बहुत ही कुशल है। और राधा रानी को और कृष्ण भगवान को दोनों को ना भोजन आरोगना में आरोगने मतलब सर्विस करने में बहुत ही कुशल है, जैसे उनके पिता बहुत कलाकार हैं वे भी बहुत कला में कुशल हैं, और ये भोजन बनाने में भी बहुत कुशल है, इसलिए रसोई में भी हम उनका नाम लिखते हैं चंपकलता देवी यशोदा देवी राधा रानी, इन तीनों का नाम अपनी रसोई में लिखना चाहिए ये जानकर कि ये रसोई उनकी है, उनके रसोई में हम लोग सेवक के रूप में सेवा करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। और विशाखा के भी जन्मदिन है आज, तो विशाखा का विशेषता यह है कि विशाखा क्या सेवा करती है कृष्ण की, राधा रानी और कृष्ण का श्रृंगार करती हैं वस्त्रों से, और उन वस्त्रों को भी संभाल के भी रखने में बहुत एक्सपर्ट है, राधा रानी के और कृष्ण के मुख पर पत्रावली का डिजाइन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, राधा रानी और कृष्ण के वस्त्र जो है वो सिलाने में भी बहुत ही बेली बूटा करने में लेसेस बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, और सुंदर सुंदर विविध फूलों से बहुत ही सुगंधी इत्र बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, और वो कौन से सीजन में राधा रानी कृष्ण को कौन से इत्र लगाने हैं, उनके दिव्य अंगों को सेवा करनी है विलोपित करना है उसमें वो बहुत ही कुशल है। और विशाखा देवी अपने पिता जैसी बहुत विद्वान है और विशेष करके विशाखा देवी हास परिहास यानी कीपिंग द एनवायरमेंट वेरी लाइट एंड जोकिंग, जुगल जोड़ी को हमेशा हास परिहास हास्य विनोद करके हमेशा खिलखिलाए रखना, ये उनका विशेषता है और वातावरण को बहुत प्रसन्न रखती है वो। और राधा कृष्ण को मिलने के लिए नए नए नित नमायमान तरीके ढूंढ के निकालती है। तो ये विशाखा देवी भी बहुत ही विशेष है और तारों की तरह उनका वर्ण है, तारों की तरह उनका वस्त्र भी है। प्रिय वाद्य वीणा है राधा रानी का और विशाखा देवी का, और प्रिय राग उनका सारंग है। हम जानते ना मधमाद सारंग, शुद्ध सारंग, मिश्र सारंग, ऐसे सारंग राग के कई प्रकार हैं। तो ऐसी विशाखा देवी का भी आज जन्म हुआ था। विशाखा देवी के पिताजी का नाम है सत्य भानु देव और माता का नाम है नव यौवनी देवी, और चंपकलता के माता का नाम है श्री समिता देवी और पिताजी का नाम है गुण भानु जी महाराज, और चंपकलता का चंपा जैसा वर्ण है इसलिए नाम ही चंपकलता है। एनीवे चंपकलता की याद आई इसलिए आपको मैंने बता दिया। और एक सुंदर कहानी मुझे अभी याद आ रही है रणवारी इस प्रदेश की। रणवारी ये जगह जो है शायद आप गए नहीं होंगे, वहां पर वो छाता के पास में है। छाता के पास आप गोवर्धन के रोड पे जाएंगे तो एक किलोमीटर आगे जाएंगे तो रणवारी नाम की जगह आती है। रणवारी का नाम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रण हुआ था, कुछ युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो ब्रज में तो केवल प्रेम का ही युद्ध होता है। तो वहां पर क्या हुआ था कि जब भगवान ने गोलोक वृंदावन में जब ये ऐलान किया था ना कि मैं आऊंगा और पृथ्वी तल में लीला करूंगा, आप सब लोग ये बनो वो बनो, सभी देवताओं को अपना अपना आदेश दिया था कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, सबको अपना रोल बता दिया था और कहा था कि इस रोल में आप पहले जाके वहां बैठ जाओ, अपना अपना स्थान ग्रहण करो, विष्णु वंश में, कुरु वंश में, यदु वंश में, वृंदावन में, बरसाने में, सबका रोल अदा करते। तो कामदेव और रति देवी जान बुझ कर कहते कि नहीं नहीं हम अपने दिल से अपनी सेवा करेंगे, अभी वो आपका दिया हुआ रोल जो है वो हम सोचेंगे उसके बारे में। तो कृष्ण भगवान जानते हैं कि कुछ लीला करना है हमको, तो ज्यादा उनको फोर्स नहीं करते हैं, तो कामदेव को वो इंडिपेंडेंस दे देते हैं कि जाओ जो करना है करो। तो कामदेव जब कृष्ण यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, रास लीला करने के योग्य हो जाते हैं, तो आते हैं तो रणवारी में वो रति देवी को भेजते हैं और कहते हैं कि ऐसा वातावरण बनाओ। हमें जानते हैं कामदेव जो है ना वो सबसे सुंदर देवता है और रति देवी सबसे सुंदर देवी है देवताओं में से, इनका सौंदर्य का कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। हमेशा हम जब कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान का सौंदर्य क्या है, हजारों कामदेव की तरह रति देवी का, राधा रानी का सौंदर्य क्या है, हजारों कामदेवों को लज्जित करने वाला, ऐसा मतलब एक स्टैंडर्ड है वो कामदेव का सौंदर्य। तो वो कामदेव और अपने पत्नी को कहते हैं कि जाओ वहां पर ऐसा जाल बिछा दो, ऐसा कामुक वातावरण बना दो कि गोपियां भी काम वासना से मोहित हो जाएं। तो ऐसा ये क्या कहते हैं उसको मिस्टी एटमोस्फेयर बनाते हैं, जैसे कि बहुत उसमें भावुक वातावरण बनाते हैं और एक सुंदर सुंदर कुंड बनाते हैं, रति कुंड कहते हैं उसको, वो आज भी वहां पर है रति कुंड। तो रति कुंड के इर्द गिर्द इतने सुंदर सुंदर वृक्षावली और सुंदर सुंदर नौका विहार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सुंदर संगीत की व्यवस्था, और गोपियां जब वहां उस वन में प्रवेश करती है रणवारी में तो वो कामदेव के पुष्प बाणों के सूक्ष्म अदृश्य पुष्प बाणों से विद्ध हो जाती हैं और उनके मन में कुछ कुछ ऐसी काम भावना निर्माण होने लगती है। और बाद में कृष्ण आते हैं और देखते हैं अरे राधा रानी सब गोपियां यहाँ पर एकदम भाव विभोर हो गई हैं और कुछ कुछ उनको ऐसे अलग प्रकार का भाव अनुभव हो रहा है। तो क्या करते हैं कृष्ण, सभी गोपियों के सामने एक एक कृष्ण के अपने अपने रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं सब वो माया का प्रभाव जो नष्ट हो जाता है और फिर गोपियां कृष्ण की ओर आकर्षित होती है, उनसे रास करती है। तो युद्ध कैसे हुआ, रति और रति ने वातावरण निर्मित की, परास्त करने वाली उनको मूर्छित करने वाली, एक दिव्य दृष्टि से मूर्छित और भौतिक दृष्टि से जागृत, ऐसी वातावरण का निर्मित किया और ऊपर से कामदेव ने अपने बाण मारे और सभी गोपियों को कृष्ण की सेना को विद्ध कर दिया। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, सब गोपी के सामने खाली प्रकट हो गए एक एक कृष्ण के रूप में। जैसे ही कृष्ण आए सारा उनका प्रभाव नष्ट हो गया और कामदेव तुरंत कृष्ण के चरणों में शरण में आ गया, रति देवी के साथ अपने पुष्प बाण पुष्प धनुष को नीचे किए हुए चरणों पर समर्पित हो गया और इस तरह से कृष्ण की उस रण में विजय हो गई। कृष्ण ने उनको कई बार परास्त किया है। उधर मदन टेर नाम की जगह है वृंदावन में, उधर भी कामदेव आए थे, राष्ट्र रचना आरंभ हो गया था शरद पूर्णिमा के दिन। तो वो हमारा जो हॉस्पिस है वृंदावन का, उसके बाजू में मदन टेर है और बंसीवट बहुत दूर है वहां से। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से लेकर पूरा जमुना किनारा जो गोल पानी घाट जगन्नाथ घाट पूरा जो है वो राष्ट्र मंडल था पूरा। शुरुआत बंसीवट पे हुई थी लेकिन मंडल इतना विशाल था, इतने करोड़ों और अब्जो गोपियां थी, वो एक एक बनकर नाचना है तो कितनी जगह चाहिए उसके लिए। तो समुद्र जितना भी जमुना किनारा था वो सब रास मंडल था। तो फिर राधा रानी को लेकर गोपियों को लेकर वो विहार कर रहे थे, वहां पर कामदेव आते हैं, अपना बाण को ऐसे तानते हैं और जिसको बाण मारना होता है उसके उस पर निशाना साधना होता है। तो बाण की नोक जो है पुष्प बाण की नोक कृष्ण के मुख कमल पर उसको नेम लगाते हैं। तो कृष्ण के मुख कमल का सौंदर्य देखकर, राधा रानी का सौंदर्य देखकर इतने मोहित हो जाते हैं कि वहीं पर उनका बाण और धनुष हाथ से फिसल जाता है और वो खुद वहां पर पिघल जाते हैं। He just melts. तो ऐसे इनका युद्ध जो है ना वो शस्त्रों से, अस्त्रों से और तलवार से और भाई अस्त्रों से नहीं होता है, ये बहुत सूक्ष्म युद्ध है, ये कृष्ण चेतना और माया चेतना का युद्ध है। तो इस लीला से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहन कृष्ण तहन नाई मायार अधिकार। जब तक कृष्ण नहीं थे तब कामदेव के द्वारा निर्माण किए गए इस वातावरण में सब गोपियां बद्ध हो रही थी, विद्ध हो रही थी। जैसे कृष्ण खाली प्रकट हो गए सब वातावरण नष्ट हो गया और पूरी दिव्यता को प्राप्त कर गए गोपियां। अभी वहां पर उसी रणवारी में बहुत देहात है, उधर कोई जाता नहीं, किसी को पता भी नहीं। वहां पर एक सुंदर मंदिर है और उसमें एक बाबा रहा करते थे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो बाबा की कहानी हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी से संबंधित है। हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी जो है वो भक्तिनाथ ठाकुर के जो प्रेरणा स्थान थे, वो पहले सूर्य कुंड पे भजन करते थे, जहाँ पर राजा रानी सूर्यदेव की पूजा करती है ना, वहां पर वो पहले भजन करते थे। उधर एक बहुत बड़े गौड़ीय बाबा रहा करते थे, मधुसूदन बाबा, बहुत विख्यात है वो, बहुत ही विख्यात है। तो वो मधुसूदन बाबा के पास वो रहते थे, भजन करते थे, उनकी वहां कुटिया भी है, भजन कुटिया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। कहते हैं कुछ समय के लिए ठाकुर भक्ति विनोद ने भी सूर्य कुंड पे भजन किया था। तो कुछ समय के बाद में वो मधुसूदन बाबा की जगह छोड़कर फिर वो रणवारी के पास आ गए और भजन करने लगे। तभी भी बहुत बुजुर्ग थे वो, बिहारी दास उनको टोकरी में उठा के घूमता था। तो वो जो दूसरे बाबा थे जो रणवारी में रहते थे वो बड़े सिद्ध बाबा थे, उनको ना रोज राधा रानी के और कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे, लीलाओं का दर्शन करते थे। तो राधा रानी एक बार दर्शन में आके कहती है, बाबा तुम यहाँ से मत जाना कभी भी, ब्रज में रहना, ब्रज में ही सेवा करना, इधर ही भजन करना। तो बाबा को पता नहीं क्या हुआ, एक दिन लगा कि नहीं नहीं मैं चार धाम की यात्रा करना चाहिए। तो राधा रानी ने तो उनको बताया था, प्रत्यक्ष आकर आदेश दिया था कि ब्रज छोड़ के मत जाना, अच्छा नहीं होगा। फिर भी मन तो मन ही होता है ना, तो चले गए वो, बाकी संतों ने मना किया फिर भी चले गए और अच्छी तरह से चार धाम द्वारका बद्रीनाथ रंगनाथ सब करके आए। और दोबारा जब लौट के आए ना, तो लौट के आते ही उनके पैरों में से अग्नि उत्पन्न हो गई और कुछ भी करे बिना किए बिना करने बाद भी वो अग्नि बुझती नहीं थी और बढ़ती बढ़ती गई। और बाबा जो थे वो बड़ा आक्रोश करने लगे और उनकी आक्रोश सुनकर जगन्नाथ दास बाबा जी अपने बिहारी दास को बोले, भैया तुम तुरंत लेके चलो, मुझे देखना है क्या बाबा जी को हो रहा है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी देखते हैं वहां पर कि वो बाबा जो है उसके पैरों से अग्नि आ रही है और वो ऊपर 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 आ रही है, पैर से जंगा तक, जंगा से कमर तक, कमर से छाती तक आ गई और सबके आंखों के सामने वो जलकर भस्म हो गए। तब जाकर जगन्नाथ दास बाबा जी को ये अनुभूति हुई कि ये ब्रज धाम है वो कैसा कर्रा धाम है, कर्रा मतलब हाउ इंटेंस इट इज, यहाँ पर इतना सा भी अपराध हो जाए ना तो उसके बहुत ही नुकसान होता है। ये देखो बाबा इतना सिद्ध बाबा था, रोज दर्शन करने वाला था और राधा रानी की आज्ञा छोड़कर चला गया और राधा रानी का आज्ञा न पालन करने से जो अपराध हुआ, ब्रज अपराध, धाम अपराध हुआ, उसे बाबा को अपना जीवन गंवाना पड़ा। उसी समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ब्रज छोड़कर नवद्वीप चले गए और नवद्वीप में आज जो उनका स्थान है जहाँ पर उनकी समाधि है, भजन स्थली है, वो हरे कृष्णा वृक्ष है, वहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंत तक भजन किया। ये समझते हुए कि ब्रज में रहना इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बहक जाते हैं, ऐसी ब्रज की कर्री स्थिति है। तो इसे ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी ने ब्रज को त्याग दिया और सीधे वो नवद्वीप धाम में चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि राधा रानी का धाम जो है वो बड़ा कृपालु धाम है, लेकिन उतना ही तीव्र भी है, उतना भी इंटेंस भी है। तो हम लोगों को ब्रज के बारे में विचार करने समय बहुत ही गंभीर होना चाहिए, शुड बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। हाँ, जैसे यात्रा में जाते हैं तो कैसा लगता है, बहुत आनंद आता है, दिन रात कथा सुनना है, प्रसाद पाना है, भक्तों से मिलना है, यात्रा करना है, नए नए स्थानों को देखना है, बहुत अच्छा मनोरंजन होता है, बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाता है रूटीन से, तो काफी अच्छा लगता है। लगता है कि जैसे मेरे भैया जो पहली बार यात्रा में आए थे ना, तो इतना इतना मोहित हो गए थे कि उधर जाकर तुरंत फ्लैट वैट ढूंढने का शुरू कर दिया यात्रा होने के बाद में, और सोचा कि रिटायर होने के बाद यही सेटल हो जाएंगे। पहली बार आए थे हम, तो हमने कहा कोई फ्लैट वैट मतलब यहाँ पर अभी आपको बहुत तैयारी करनी है, उसके बाद में फ्लैट वैट की तैयारी करना, क्योंकि यात्रा में जाने के समय को बहुत ही सब कुछ अच्छा 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 लगता है। वास्तव में ब्रजवास जो है वो बहुत कर रहा है, अच्छी वहां पर परीक्षाएं होती है और एग्जामिनेशन होती है आत्मशुद्धि के लिए। उसके आगे मुझे बात याद आती है कि मोरकुटी की, हाँ मोरकुटी में ना एक बाबा रहा करते थे। अभी मोरकुटी की कहानी जो है पहले बताता हूँ आपको, आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। देखो ब्रह्मा जी कितने महान हैं, ब्रह्मा जी इस विश्व के प्रथम नागरिक हैं, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण उन्होंने अपने इंजीनियरिंग में किया है। 24 तत्वों को विष्णु से लेकर पूरा उपसर्ग यानी सेकेंडरी क्रिएशन उन्होंने बनाया हुआ है। और जितने भी लोग हम सब यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग तो बहुत कम नंबर में है, लेकिन जितनी भी जनता इस 14 भुवन में है वो सबके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर वो एक ही है। अगर वो एक फैमिली फोटो निकालेगा ना तो पता नहीं कौन सा कैमरा लगेगा उसके लिए, क्योंकि सब लोग उनकी फैमिली है। दे आर ऑल हिज चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन, एवरीबॉडी इज हिज चिल्ड्रन ओनली। तो ऐसे व्यक्ति भी जब राधा और कृष्ण की चरण धूलि चाहते हैं ना, तो कितना साल तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, 120,000 साल तपस्या किया, उसमें 60,000 साल तो सृष्टि के निर्माण के पहले ही किया, निर्माण होते ही किया, मतलब पहले सत्ययुग के पहले 60,000 साल तपस्या किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको कुछ, तो अपने काम पे लगे, सेवा में लगे। उसके बाद में वो पहले सत्ययुग के एंड में वापस 60,000 साल तपस्या किया, और कुल 120,000 साल तपस्या करने के बाद कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया, भाई क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं कि आपके दोनों के चरणों की धूल चाहते हैं। ममोपरि क्रीड़ा करिष्यसि, मेरे ऊपर आप क्रीड़ा करो। तो कृष्ण कहते हैं विश्वानुपुरम गत्वा, विश्वानुपुर में चले जाओ, ब्रज बहुत बड़ा है लेकिन खास तुम प्रसाने में चले जाओ। तो वहां जाके वो पत्थर बने हुए, देखो अभी इतने बड़े व्यक्ति जो है वो पत्थर बने हुए हैं, कितनी कड़ी तपस्या है। देखो आप, एक तो 120,000 साल की तपस्या, उसके बाद में फिर बनना क्या है, रिवॉर्ड क्या मिलता है पत्थर बनने का, पत्थर बनना मतलब क्या, मिस्टर नोबडी, उस पर चलो, उस पर कूदो, टट्टी पेशाब करो, उस पर गंदगी करो, कूड़ा फेंको, कुछ भी करो, वो कुछ नहीं कर सकता है। और ये सब किस लिए है, राधा कृष्ण के चरणों की धूली प्राप्त हो जाए, गोपियों की धूली प्राप्त हो जाए। तो वहां बैठे हैं वो चार मुख वाले ब्रह्मा जी, तो चार मुख, चार चोटी वाले शिखर वाले वहां पर पर्वत बने हुए हैं। तो उसमें से एक पर्वत है मान मान मानगढ़, एक पर्वत है भानुगढ़ जहां पर विश्वानु महाराज का महल है, राधा रानी श्रीदामा आनंद मंजरी माता कीर्तिदा रहती है, एक दानगढ़ है वहां पर भगवान रति दान मांगते हैं, राधा रानी से दान मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, विलासगढ़ में लीला करते हैं, झूला झूलते हैं, रास रचाते हैं, और मान मंदिर में राधा रानी मान करती है। तो राधा रानी एक बार रूठ जाती है, बहुत लंबी कहानी आपको संक्षेप बताता हूँ, तो राधा रानी रूठ जाती है तो ललिता जी भी मनाने जाती है, बार बार मनाती है मनाती है, वो नहीं मानती है, ऊपर 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 हो जाती रहती है, एक बार चोटी में पहुंच जाती है। कृष्ण भगवान उनको बहुत मनाते हैं, चरणों में अपना सर डाल सर रखते हैं, मुकुट रखते हैं, अश्रु बहाते हैं, चरण धोते हैं, ब्रज में लोटपोट हो जाते हैं, बहुत याचना करते हैं, बहुत 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 गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी राधा रानी नहीं मानती। ललिता देवी उनके कान में कुछ कहती है, तो ललिता देवी तुरंत निकल जाती है और कृष्ण भी तुरंत निकल जाते हैं। कितने घंटों के प्रयास के बाद वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर मोर कुटी नाम की जगह जो है, वो पहले मोर कुटी नहीं थी, वो ऐसे ही थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा हिलॉक था, थोड़ा सा टील था। वहां पर एक मोर आता है, बहुत सुंदर मोर, और वो बहुत सुंदर नृत्य करने लगता है। बहुत सुंदर नृत्य करता है तो जो सखियां वहां बैठी हुई है मनाने के लिए, तो कहते देखो देखो कितना सुंदर बोना है। तो राधा रानी इतनी रूठी हुई, देखने को भी तैयार नहीं। फिर उनको बहुत मनाते हैं, कृष्ण मोर और अच्छी तरह नृत्य करता है, तो वो कहते हैं कि अरे देखो कितना सुंदर मोर है। तो राधा रानी थोड़ा सा हल्के से मुड़के देखती है, तो उसको बहुत आनंद आता है उस मोर को देखकर। फिर पूरा अपना पोजीशन चेंज करके बैठ जाती है और पूरा उसका नृत्य देखती है, तो मोर को और उत्साह आता है, बहुत प्रेम से नृत्य करता है। तो नृत्य करने के बाद में राधा रानी इतनी मोहित हो जाती है, भूल जाती है किसने गुस्सा किया था, और जाकर उस मोर के साथ नृत्य करने लगती है, मोरनी बनकर। और दोनों मिलकर झूम झूम के बहुत नृत्य करते हैं। और आखिर में जब वो एकदम नृत्य के पोज में एकदम पास में आ जाते हैं, तो राधा रानी को समझ में आता है कि ये तो हमारे श्याम सुंदर जी हैं जो मोर बनकर भिजा रहे हैं। तब तक तो उनका मान वगैरह सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये है मोर कुटी, उसके बाद उसका नाम पड़ा मोर कुटी। और मोर कुटी पे कृष्ण भगवान मोर बनकर राधा रानी को रिझाने के लिए नाचे थे। बस एक ही लीला नहीं है, वहां पर बहुत लीलाएं हैं। कैसे मोर लीलाएं हैं सब कुछ। एक दिन कृष्ण भगवान वहां पर आए, राधा रानी आई, मंद मंद शीतल शीतल सुगंधित हवा बह रही थी। उस समय उनकी चुनरियां उत्तरी वस्त्र आकाश में से उड़ रहे थे। उस समय मंद मंद हवा बह रही थी, तो आकाश में बादल इकट्ठा हो गए, मंद मंद वारी बिंदु गिरने लगे और झरझर वर्षा होने लगी, तो वहां से मोर इकट्ठा हो गए। राधा रानी के मोरनिया आ गई, कृष्ण के मोर आ गए, और उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने मुरली उठाई, बजाना शुरू किया, राधा रानी ने अपने कंगन और पेंजनिया बजाना शुरू कर दिया। यही म्यूजिक था और कुछ नहीं, दोनों ही खाली खड़े बस। तो इस सुंदर सिंफनी में, इस सुंदर म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा में वो मोर थाई थाई नाच करने लगे, और इनके नाच का आनंद राधा और कृष्ण ने लिया। अगली बार कृष्ण मोर बनकर स्वयं आए, इच्छा से राधा रानी मोरनी बनकर स्वयं आई, और दोनों ने गोपियों को लेकर मोरनियों को लेकर बहुत सुंदर मोर मोरनी का नृत्य किया मोर कुटी के ऊपर। उसके बाद में एक बार कृष्ण आए और मोर का भेष बनाया, मतलब मोर का श्रृंगार किया। राधा रानी आई और मोरनी का श्रृंगार किया, और दोनों ने मिलकर वहां पर सुंदर नृत्य किया। फिर गोपियां भी मोरनी का श्रृंगार करके वहां पर ज्वाइन हो गए और बहुत सुंदर वहां नृत्य किया। इस तरह से मोर कुटी पे हर रोज नित नई मोर लीला होती रहती है। मोरों के संबंध में वहां पर कैसे ना कि कृष्ण भगवान राधा रानी की अपनी अपनी मोर मोरनियां हैं, उनको वो बहुत प्रेम से ट्रेनिंग देते हैं, डांस का ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत सुंदर वहां पर महोत्सव आयोजित करते हैं। वो मोर मोरनियां बहुत प्रेम से नाचती हैं कृष्ण भगवान के लिए, उनको आनंद देने के लिए, रिझाने के लिए। तो मोर कुटी पे एक बूढ़े बाबा रहते थे। वो कृष्ण की लीला तो 5000 साल पुरानी है, लेकिन बूढ़े बाबा की लीला है वो तो अभी अभी की है, कुछ 100-200 साल पहले। तो वो अंधे थे बूढ़े बाबा, और इतने सिद्ध भक्त थे वो कि उन्हें रोज रोज साक्षात्कार दृष्टांत होता था राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं का। तो एक बार उस बाबा को राधा रानी ने अपनी पूरी मोर लीला दिखाई दृष्टांत में, स्वप्न में नहीं। अंधे को तो दिन में भी दिखता नहीं, तो मनस पटल में उसके मनस चक्षु जो होते हैं ना, उसके अंदर उनको पूरी लीला दिखाई दी। और राधा रानी कहती है लीला दिखाने के बाद में कि अभी इस लीला का चित्रपट निकालो आप। तो राधा रानी को अंधे बाबा कहते हैं मैं तो अंधा हूं, मैं चित्रपट कैसे निकालूंगा। कैसे है कि ऐसे राधा रानी है और ऐसे कृष्ण है, ऐसे वो उन्होंने एक बादाम बना के रखा है हार्ट, वो उनका लास्ट पोज है नृत्य में, तो वो चित्रपट बनाने के लिए आदेश देती है। तो वो कहते हैं कि मैं तो अंधा हूं, उन्होंने कहते मेरी कृपा से आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर वो अंधे व्यक्ति के हाथ से राधा रानी ने वो चित्रपट बनवाया है, और वही चित्रपट वहां पर उधर सेवा में लगाया हुआ है, वो उनका ऑल्टर में वही फोटोग्राफ है। वो चित्रपट जो दिव्य चित्रपट जो उन्होंने अपने साक्षात्कार में उसका दर्शन किया था, वो वहां पर उसकी पूजा की जाती है आज भी। तो वो जो बूढ़े बाबा थे ना, उनके लीला से हम समझ सकते हैं कि राधा रानी की कृपा होने पर हाँ क्या नहीं कर सकता आदमी, बूढ़ा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति चित्रपट भी निकाल सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल भी सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ सकता है, क्या नहीं कर सकता है? बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं, राधा रानी की कृपा ऐसी चमत्कारी कृपाएं हैं, क्या नहीं हो सकता है? तो एक चमत्कार उस बूढ़े के जिंदगी में राधा रानी की कृपा से कैसे हुआ था? एक सिंह था, सिंह जो उसका शिष्य था, और वो सिंह तो ना इतना बढ़िया भक्त था, उसके गले में वो एक थैली लटकाते थे, और वो सिंह जो है वानपुर में जाकर ब्रजवासियों के घर में भिक्षा करता था। हाँ, टिंग टोंग जब बेल बजती थी, दरवाजा खोलेंगे तो सामने सिंह खड़ा हुआ है, भगवती भिक्षां देही। अगर आपके घर में बेल बजाएगा और कोई सिंह खड़ा हो जाएगा, लायन इज स्टैंडिंग एट द गेट, व्हाट विल हैपन टू यू? लेकिन उनके लिए रोज की घटना थी, रोज की घटना थी। सिंह आता था, उनके गले की थैली में रोटियां डालते थे, और वो चार घर की रोटी लेकर वो सीधे ऊपर जाता था मोरकुटी पे, बाबा को देता था। बाबा फिर वो अमनिया मानकर उसको भोग लगाते थे और खुद पाते थे, उसके बाद में बची हुई रोटी उस सिंह को देते थे, और सिंह अपने गुरु प्रसाद को पाता था और वहां आराम से रहता था भजन करते हुए। ऐसा चमत्कारिक घटनाएं राधा रानी की कृपा से उस धाम में होती है। राधा रानी के धाम में जब जाएंगे ना हम, तो बी रेडी फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होती है। तो आगे जाकर राधा रानी के एक उधर छत्रवन नाम का गांव है ना, आप लोगों को अनहर्ड कहानी सुननी है ना, तो उधर पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैं ना, हमारा उधर अस्पताल है बरसाने में, हम लोग वहां पर फ्री में लोगों के ऑपरेशन करते हैं, साल भर भी ऑपरेशन करते रहते हैं, कैंप भी लगाते हैं, और सब विधवासियों की फ्री आंखों की सेवा करते हैं। तो उसमें हमारे छाता के कुछ कर्मचारी भी हैं, वो क्या कहते हैं, स्टाफ मेंबर्स। तो हमने उनको ना स्टाफ मेंबर्स का बताया था कि आप एक काम करो खाली, बस मेरी आपको एक ही इच्छा है कि आप छत्रवन की कहानी मुझे सुनाओ, गांव में जाओ, बुजुर्गों को पूछो, माँ बाप को पूछो, संतों को पूछो, जिसको पूछना है पूछो, मुझे छत्रवन में क्या लीला हुई तो बताओ। क्या बताएं आपको, मैं एक बार गया लौट के आया, दो बार गया लौट के आया, छह महीने बीते फिर भी वो बेचारा लड़का जो है वो गांव गांव में अपने बुजुर्ग को, मैंने कहा कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को पूछो, अभी नए नए लोग तो सब बेकार हो गए, उनको पता नहीं कुछ, तो बुजुर्गों को भी पूछ के आया, बुजुर्गों को बोलते पता नहीं है, अरे छत्रवन में रहते हो, छाता में रहते हो, फिर भी छाता की लीला पता नहीं है, तो बाकी व्रत की लीला कैसे पता चलेगी आपको? तो बाद में आके बोलते भाई प्रभु जी हम हार गए, प्रभु जी हम तो नहीं कह सकते, आप ही बता दो। तो फिर हमने वो छत्रवन की कहानी उनको बता दी। तो क्या कहानी है कि छत्रवन क्यों नाम पड़ा, छत्रवन में कृष्ण भगवान एक जगह पर बैठे थे और ग्वाल बालों के मन में आया कि इनको राजा बना देंगे, लाला को राजा बना देंगे। तो ऐसा सिंहासन बनाया बढ़िया से, छत्रवत्र लेकर आए और चमर लेके आए, चमर डुलाने के लिए लेके आए, बहुत सारा अपना अपना गांव का चीज लेके आए, और कन्हैया जी को राजा बना दिया। हाँ, अरे कन्हैया राजा है हमारे, ब्रज को राजा है, और किसी ने चमर डुलाया और छत्र पकड़ा उसके ऊपर छत्र। तो उसी जगह पर जो आज छाता नाम से प्रसिद्ध है, उसी जगह में कई और दूसरी जगह पर राधा रानी को रानी बनाकर छत्र धारण कराया था। कुछ सखियां मंत्री बनी थी, कुछ सखियां संतरी बनी थी, कुछ पुलिस बने थे, कुछ कौन कौन बने थे, पूरा दरबार बना दिया था, सब मंत्रिमंडल बना दिया था, और दो तीन गोपियां छत्र धारण करी थी राजा रानी को, राजा रानी को छत्रपति बना दिया, मतलब रानी बना दिया, दरबार हो गया, दरबार खड़ा हो गया, राजा रानी रानी बनकर बैठी है, बीच में सब मंत्री भी गोपियां अष्ट सखियां बैठी है, और दरबार शुरू होता है तो उसमें कंप्लेंट आती है कि कोई वो नंदगांव का लाला है, बहुत उद्दंड बालक है, वो आपकी रानी होते हुए भी राजा बनकर बैठा हुआ है, तो क्या किया जाए? तो दरबार निर्णय लेता है कि जाओ उसको अरेस्ट करके ले जाओ। तो सब गोपियां जाती है डंडा वंडा लेकर, जहां पर हमारे महाराज जी बैठे हैं राजा बनकर, उसको जाकर सब गोपियां झपट पड़ती है, सब ग्वाल बालों को पकड़ दिया है, अरेस्ट करती है, बांधती है और घसीट के लेके आते हैं राजा रानी के दरबार में। आगे तो ये देखो आपके राज्य में राजा बनने का प्रयास कर रहा है, क्या दंड दिया जाए उसको? तो भगवान हमारे राजा बने हुए थे पहले, अभी तो हाथ जोड़कर महारानी की भिक्षा मांग रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, भाई माफ कर दो, अभी हम गलती हो गई, फिर दोबारा राजा नहीं बनेंगे। तो फिर ललिता कहती है कहो कि राजा रानी रानी है, वृंदावनेश्वरी राजा रानी है। तो फिर कृष्ण भगवान मान जाते हैं कि भाई यही राजा रानी हमारी रानी है, हमारी वृंदावनेश्वरी है, हम इनके सेवक हैं, क्या सेवा करें? तो राधा रानी बड़ी भोली है, ये सब गोपियों का चाल थी, राधा रानी तो बहुत दुखी थी कि हमारे कृष्ण को बांध बांध कर लेके आए हैं। तो कृष्ण की नम्रता को देखकर कहते नहीं नहीं छोड़ दो इसको, छोड़ दो, माफ कर दो इसको। तो राधा रानी फिर दया से कृष्ण को छुड़ा देती है। तो ऐसे ही जब कृष्ण भगवान का अभिषेक हुआ था ना गोवर्धन में, जब उन्होंने धारण किया था गोवर्धन को, तो इंद्र ने पश्चाताप किया था। फिर इंद्र ने कहा कि भगवान को भी इतना कष्ट दिया हम लोगों ने, थोड़ा उनको रिझाना भी चाहिए। तो वो सब लोग कैसा होता ना, वो इट्स कॉल्ड एज राजनीति, सो डिप्लोमेटिक बिहेवियर, कि आई हैव गिवन सो मच ट्रबल सो नाउ आई शुड डू समथिंग सो दैट आई कैन प्लीज एंड गो इन हिज गुड बुक्स। तो भगवान के आपका अभिषेक करें, क्या ठीक है करो वही, ठीक है अभी पहले अपराध करते हो फिर पश्चाताप करते हो फिर कुछ कुछ सेवा करने का प्रयोजन करते हो और ब्रज में मेरा बहुत बड़ा टाइम पास करते हो, मैं तो यहाँ सब कुछ छोड़कर उधर खेलने के लिए आया हूँ, तुम लोग बीच बीच में आते रहते हो और एक तो बड़े बड़े लोग हो ऊपर से आकर कुछ गलतियां कर बैठते हो, फिर गलतियों का पश्चाताप करते हो, फिर बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, फिर उसके बाद में कुछ कुछ करना चाहते हो, तो मेरा बहुत समय बर्बाद करते हो, जो करना जल्दी जल्दी कर लो। तो उन्होंने फिर कृष्ण का अभिषेक किया, उनको गोविंद नाम से वृंद का राजा बनाकर घोषित कर दिया। तो जब बात सुनाई पड़ी गोपियों को कि कृष्ण का अभिषेक किया गया इंद्र के द्वारा किया गया, चलो हम भी राधा रानी को वृंदावन की ईश्वरी बना देते हैं। तो इमली तला में जहाँ पर कृष्ण भगवान एक बार गौर कांतिमय हो गए थे ना, राधा रानी के विचार से वो रास लीला के बीच में अंतर्धान हो गए थे, तो वहां पर बैठ के ध्यान किया था, तो वहां पर वो पीले रंग के हो गए थे, गौर स्वर्ण वर्ण के हो गए थे। उसी जगह पर राधा रानी को सिंहासन पे बिठाया और बहुत पवित्र जल से राधा रानी का अभिषेक किया और वृंदावनेश्वरी के नाम से नक्षत्र धारण कराया और अभिषेक कराया और घोषित कर दिया कि राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी है। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग बरसाना के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो बरसाना धाम है ये सूर्यवंशी राजाओं ने बसाया हुआ है। सूर्यवंश में कौन कौन आते हैं, सगर राजा, दिलीप राजा, अंशुमान राजा, रघु राजा, जो रघुकुल के राजा, जिनका रघुकुल कहते हैं ना, राम जी का, जिसमें राम जी का अवतार हुआ है, तो वो रघु राजा, फिर प्रभु रामचंद्र, उसके बाद में अभय कर्ण जी, उसके बाद में रशंग राजा, इन्होंने बरसाना बसाया हुआ है। और उसी में फिर कुंज भानु जी, मही भानु जी और विष्णु महाराज अवतरित हुए हैं। तो कृष्ण की लीला संपन्न होने के बाद बज्रनाम ने ये राधा रानी का विग्रह बनाया, राधा और श्याम सुंदर जी का, लाडली लाल का विग्रह बनाया और स्थापन किया। यथावकाश वो लुप्त हो गया, आप सब जानते हैं सभी विग्रह लुप्त हो गए, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, सब विग्रह लुप्त हो गए। तो ये जो विग्रह हैं वज्रनाभ के द्वारा बनाए गए, उन्होंने उसको बनाए रखने के लिए विग्रह स्थापन करके जहाँ पर भानु महल था, जिस भानु महाराज का घर था, वहां पर वो मंदिर बना दिया लाडली लाल का। और जब वो मूर्तियां लुप्त हो गई तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने, जो नारद मुनि के अवतार है, उन्होंने जन्म लिया ऊंचे गांव में, ललिता जी के गांव में, और वो बड़े सिद्ध भक्त थे। और हमारे जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जिन्होंने दक्षिण ब्रज का जीर्णोद्धार किया है, और उत्तर ब्रज का जो जीर्णोद्धार है वो नारायण भट्ट गोस्वामी और कई और संतों ने किया है, इसलिए हमारे गोस्वामियों के लिटरेचर में वो काम्यवन और बरसाना और वहां के वर्णन ज्यादा नहीं आते हैं, इधर के वर्णन ज्यादा आते हैं। तो नारायण भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में राधा रानी आई और स्वप्न में भानुगढ़ में हाथ पकड़कर नारायण भट्ट गोस्वामी को ले गई राधा रानी और जगह दिखाई कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से खोद के निकालो और पुनर्स्थापना करो। आज भी वो स्थान जो है राधा रानी के मंदिर से, आप जो जाते हैं ना कुशल बिहारी जी के मंदिर में, उसके आधे रास्ते पर वो जगह है, बड़ा पेड़ है बहुत सुंदर, उसको जरा डेकोरेट करके रखते हैं वहां पर फूल वूल लगा के, तो लोग बत्था फेंकते हैं, आप समझ जाएंगे कि यही जगह है जहाँ पर श्री जी की प्राप्ति हुई थी। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ब्रजवासियों को सहायता से वो खुदाई करते हैं प्रेम से और लाडली लाल के विग्रह प्रकाशित करते हैं और वहां से जाकर वो मंदिर में उन्होंने विराजमान किए हैं। तो ये छोटा सा इतिहास है नारायण भट्ट की कृपा से, और वो विग्रह को लेकर राधा कुंड पे भी आए हैं कुछ समय के लिए, और फिर जाकर उन्होंने वो भानु महल पर राधा रानी की आज्ञा के अनुसार, बड़े सिद्ध भक्त थे राधा रानी का, उनको दर्शन हुआ करता था। तो अभी उसके आगे जो कुशल बिहारी का मंदिर है उसके अंदर बहुत सुंदर कथा है, बड़ी बोधदायक कथा है, बोधप्रद कथा है। वो क्या कथा है कि सवाई माधो सिंह राजा थे, राजपूत थे वो, हमारे बंबई से मथुरा आते समय वो स्टेशन भी आता है सवाई माधोपुर जंक्शन, वो उस राजा के बहुत बड़ा शुद्ध भक्त था वो, बहुत राजपूत राजा, बड़े वैष्णव भक्त हुआ करते थे, बहुत समर्पित थे वो। तो उनको लगा कि अरे राधा रानी का मंदिर तो जीर्ण हो गया है, तो अभी खाली जगह तो उधर दानगढ़ पे पड़ी हुई है, तो वहां जगह पर हम लोग बहुत सुंदर मंदिर बनाते हैं। तो पहाड़ पर मंदिर बनाने की योजना की गई, पहाड़ पर हाथियों पे ढोकर पत्थर ले गए जाए गए, वहां से कुदुम का कोरियल काम किया गया, उसको ठोका गया, और कई सालों तक बहुत ही मेहनत करके इतना कला कुसर वाला बहुत भव्य मंदिर बनाया गया। हाँ, अभी मेरे पास चित्रपट नहीं है, मैं दिखा देता आपको, लेकिन वो मंदिर का कोना कोना देखे बिना उसकी भव्यता आपको समझ में नहीं आएगी। आज भी 400 साल के बाद में कुछ मेंटेनेंस नहीं होते हुए भी वो उसकी जो बारीकी है, उसकी कला कुसर जो है, वो उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इतना सुंदर वहां पर मंदिर बनाया, इतना भव्य दिव्य मंदिर बनाया, एक तरह से राधा रानी के मंदिर से भी वो भव्य दिव्य बनाया। और इतना साल मेहनत करने के बाद में वो दिन आया जिस दिन अगले दिन राधा रानी के विग्रह को भानुगढ़ से मंदिर से निकालकर यहाँ पर प्रस्थापित करना है, ताकि राधा रानी अच्छे मंदिर में रहे, अच्छे सुशोभित मंदिर में रहे। कल पूरी उनको शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो गई है और कल के दिन राधा रानी आएंगी, ऐसा ही योजना है। इतना सारा साल मेहनत करने के पश्चात उस रात को, जिसके अगले दिन ये होना है, उस रात को राधा रानी उस राजा के स्वप्न में आती है। तो इसका प्रमाण क्या है? राधा रानी किसी भी ऐरे गेरे के स्वप्न में नहीं आ सकती है, तो शुद्ध भक्त होगा तो उसके स्वप्न में आएगी। इसका मतलब राजा का जो सेवा थी वो इतनी महान थी कि राधा रानी प्रसन्न थी उसके ऊपर, एक शुद्ध भक्त के रूप में, तो उसको स्वप्न में आई और कहा कि बेटा, मैं आपके बनाए हुए नए मंदिर में नहीं आ सकती, क्योंकि जहां पर मैं हूं वो मेरे पिताजी का घर है, मेरा निज घर है, निज धाम है, निज गृह है। मैं उसको त्याग करके भले वो जीर्ण हो गया रहेगा, लो मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकती, मेरा वो स्थान चिरंतन स्थान है, मैं वही रहूंगी। अभी आप और हम उस जगह होते ना तो क्या कहते हैं, पहले क्यों नहीं बताया? अभी स्वप्न में आने के पहले क्यों नहीं आए? तब मैं इतना प्लानिंग नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करता, इतने हाथियों को काम पे लगाता नहीं, इतने कारीगरों को लगाता नहीं। ऐसे हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा ना कि वाई नॉट टेल अर्लियर, इतना सब मेहनत करने के आपको आना ही नहीं था, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो आप पहले ही बता देते कि मुझे आना नहीं है, तो मैं इतना प्रयास से नहीं करता। ऐसे हम लोग सोचते, लेकिन राजा ने एक क्षण मात्र में भी ऐसा विचार नहीं किया। उन्होंने क्या सोचा कि मैंने ये मंदिर बनाया क्यों? मैंने ये मंदिर इतना बड़ा बनाया कि राधा रानी को खुशी मिले, राधा रानी प्रसन्न हो, उनकी सेवा में मैंने ये सब काम किया, और अगर उनकी खुशी वहां रहने में है तो मेरी खुशी भी उनको वहां रखने में है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और दूसरे विग्रह आकर वहां पर स्थापन कर दिए, राधा कुशल बिहारी जी महाराज, और राधा रानी वही रही। मैं जब भी उस मंदिर में जाता हूँ तो राधा राजा माधव सिंह, अभी उनका एक केवल फोटो रखा हुआ है, ना उनका नाम लिखा है ना कोई जानते हैं फोटो के बारे में, लेकिन फोटो मंदिर में जरूर रखा है, एक खंभे पे लगाया हुआ है, दाढ़ी वाले महाराज जी, बहुत सुंदर उनका फोटोग्राफ है, वो भी फोटो कम पेंटिंग है, वो तो कोई जानता भी नहीं उनके बारे में, कोई बात भी नहीं करता उनके बारे में। तो राजा माधव सिंह का जो भाव है, उनके हृदय का जो भाव है, समर्पण का, त्याग का, सेवा का भाव है, उसका पूरा मंदिर प्रतीक है। वो ज्यादा भीड़ नहीं होगी उसके अंदर, लेकिन एक भक्त का मन राधा रानी के प्रति कैसा होना चाहिए? हाँ, कुछ कुछ चीजें हम करते हैं खुद के लिए करते हैं, नाम सेवा का होता है लेकिन खुद के लिए करते हैं, वो सब राधा रानी जानती है, लेकिन इन्होंने इतनी महान सेवा की, इनका हृदय क्या था? जस्ट टू प्लीज राधा रानी, राधा रानी संतुष्टि प्राप्त हो, यही उनका भाव था। तो वो कुशल बिहारी मंदिर जो है वो ऐसे दिव्य चेतना का एक प्रमाण है, वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है, जस्ट टू मेडिटेट अपॉन, तो चिंतन करने के लिए योग्य विषय है वो, कि कैसी चेतना होनी चाहिए राधा रानी के धाम में जाने के लिए। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ विशेष रूप से, जो हम सब लोगों को उसको चिंतन करना जरूरी है। हम सब लोग बसाने जाते हैं और यात्रा करते हैं और वहां पहाड़ पे चढ़ते हैं, लेकिन वो पहाड़ जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी है, केवल ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी का शीश है, वो चार ब्रह्मा जी के सर हैं। इसलिए नीचे ही पहले सीढ़ी पर कदम रखते समय हम सब लोगों को प्रणाम करना चाहिए, ब्रह्मा जी महाराज आपके सर पे हम लोग चढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आपके सर पे ऊपर चढ़कर हम केवल राधा रानी का दर्शन लेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, जो बने वो सेवा करेंगे, लेकिन कोई भी इंद्रिय भोग नहीं करेंगे इस पहाड़ के ऊपर, चाहे वो भानुगढ़ हो, विलासगढ़ हो, दानगढ़ हो, मानगढ़ हो, तुम पहाड़ों की चोटी पर कोई भी इंद्रिय भोग, कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करेंगे। हाँ, उधर जाके गोलगप्पे लस्सी पकोड़े नहीं खाएंगे, और हो सके तो लघु शंका भी नहीं करेंगे, वो सब नीचे जाके करेंगे। ये संकल्प करके ब्रह्मा जी को वंदन करते हुए नम्रता से, हमारे ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय के सबसे पहले वो प्रमुख आचार्य हैं, चारों संप्रदाय के आचार्य हैं, महान आचार्य हैं। तो ये भाव से हमको पहाड़ पर चलना चाहिए, चाहे वो भानुगढ़ का दर्शन कर रहे हैं, दानगढ़ का कर रहे हैं, विलासगढ़ का कर रहे हैं, या हनुमान मंदिर मंदिर जा रहे हैं। ये भाव रखना चाहिए कि हम लोग जैसे अभी हमारे गुरुदेव हैं, राधानाथ स्वामी महाराज है, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत जी हैं, क्या उनके सर पे हम चढ़ सकते हैं कभी किसी भी काम के लिए? तो सोच सकते हैं कि हम उनके सर पे चढ़ रहे हैं? एक बालक अपने पिता के सर पे चढ़ सकता है, लेकिन एक शिष्य अपने गुरु के सर पे चढ़ सकता है क्या? तो ब्रह्मा जी तो हमारे संप्रदाय के परम गुरुदेव हैं, वो वहां पर पत्थर बन के खड़े हैं, उनके सर पे चढ़कर लोग जा रहे हैं, और वो उनके लिए ओके हैं। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? इंद्रिय भोग का भाव नहीं होना चाहिए, और गंदगी करने का भाव नहीं होना चाहिए, केवल भक्ति भाव होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। तो अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले से मन से भी आप ये क्षमा मांग लेना ब्रह्मा जी से, मन से भी प्रार्थना कर लेना यहाँ बैठ के, क्योंकि हम मानसिक यात्रा कर रहे हैं। अभी हम भानुगढ़ में जाएंगे, वहां पर राधा रानी का दर्शन करेंगे, वहां पर मंदिर में चढ़ने के पहले उधर छोटे छोटे राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, जितने चरण चिन्ह राधा रानी के विग्रह के हैं, लाडली जी के विग्रह के हैं, उतने ही चरण चिन्ह वहां पर विराजमान हैं। सिंगपुर पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके नीचे वो राधा रानी के चरण का चिन्ह का दर्शन है, कामधेनु का दर्शन भी शुरुआत में आता है। फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ पर एक छतरी है सफेद रंग की, वहां पर राधा रानी के विग्रह आज के दिन राधाष्टमी के दिन, हरियाली तीज के दिन, और क्या नाम, राधाष्टमी और होली के दिन, तीन दिन विग्रह नीचे आते हैं, और राधा रानी स्वयं नीचे आती हैं, और हर प्रकार के समाज के लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। और विशेष बात यह है, राधा रानी जब नीचे आती है आज के दिन, अभी वो इस समय पर अभी 5 बज रहे ना, 1 बजे 4:30 को नीचे आ गई है, वो 7:30 तक वो नीचे ही रहेंगी, वो सफेद छतरी में, संगे मरमर की छतरी है वो, मार्बल अम्ब्रेला, उसमें वो रहती है। और आज के दिन गोसाई लोगों की कन्याएं उनकी पूजा करती हैं, सारे दिन ऊपर जब मंदिर रहते हैं तो गोसाई पुरुष उनकी पूजा करते हैं, तो गोसाई लोग जो पूजा करते हैं उसको आरती कहते हैं। और जब गोसाई की कन्या उस दिन उन 3 दिनों में पूजा करती है उसको आरता कहते हैं। तो कन्याएं अभी आरता करेंगी 7 बजे, और वो आरता होने के बाद में राधा रानी के विग्रह को फिर ऊपर लाया जाएगा। ऐसे ही हरियाली तीज को होता है, ऐसा ही होली के दिन होता है, ये उनकी विशेषता है। फिर हम ऊपर जाएंगे, वहां पर मंदिर में दर्शन होगा, अगर बीच में राधा रानी और श्याम सुंदर जी विराजमान है, देखिए गौर से हम देखेंगे तो क्या विशेष बात है, एक समझने लायक एक सीखने लायक बात है। राधा रानी तो चुनरी ओढ़ के खड़ी है, श्री कृष्ण भगवान को भी चुनरी ओढ़ाई जाती है, श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ पर सखी बनकर खड़े हैं। विवाह करके राधा रानी के, राधा रानी ने कहा कि हमको घर जवाई बन के आपको रखना है, हमारे घर पे रहिए, हमका विरह सहन नहीं होता है, तो हमारे घर पे रहिए। तो वो राधा रानी के घर में ही घर जमाई बनकर श्याम सुंदर जी लाल जी वहां पर विराजमान हैं, तो सखी भाव में उनको भी चुनरी ओढ़ाते हैं। तो क्या सार हुआ कि राधा रानी के स्थान में प्रवेश करने के लिए सभी पुरुषों को भी स्त्री बनना पड़ता है। स्त्री बनने का मतलब क्या है, शरीर चेंज करना नहीं है, वो जो पुरुषत्व है, स्वामित्व है, नियंत्रण का भाव जो है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, ये जो भाव है उसको त्याग करके एक नम्र भाव से वहां पर प्रवेश करना है। और साक्षात जो वास्तविक नियंत्रक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वर जो साक्षात वास्तव में है, हम तो समझते हैं अपने आप को, लेकिन वो तो वास्तव में सर्वलोक महेश्वरम है, भोक्ता है, नियंत्रक है, प्रोप्राइटर है, वो भी वहां पर सारे प्रोप्राइटरशिप छोड़ते हैं और सखी बनकर वहां पर रहते हैं, एक नम्र व्यक्ति बनकर रहते हैं, एक सेवक बनकर वहां रहते हैं। तो ये विशेष दर्शन में हमको देखना चाहिए कि हमारे स्वामी, हमारे नाथ, हमारे लक्ष्य जो है जीवन के, वो भी वहां पर राधा रानी के सेवका सेवक के रूप में वहां पर विराजमान है। और वहां पर आगे जाएंगे, गोल घूम के मंदिर के बाहर जाएंगे, तो वहां पर राधा रानी का एक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, मंदिर के पीछे है वो, नंदगांव की ओर जहां उनकी दिशा है, वहां से ऊंचा गांव भी दिखाई पड़ता है, एक तरफ नंदगांव दिखाई पड़ता है, वहां पर राधा रानी खड़ी रहती है और वहां से कृष्ण को इशारे करती है। जब मौसम साफ होता है ना तो नंदगांव भी वहां दिखाई पड़ता है, कोई धुंध होती दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पर से राधा रानी खड़े होकर कृष्ण को इशारे करती थी इतना भाव से इशारे करती थी कि वहां पर उनके पैर से जो पत्थर का स्पर्श हुआ था वो पत्थर पिघल गया और राधा रानी के चरण चिन्ह वहां निर्माण हो गए। राधा रानी के चरण चिन्ह वहां पर आपको मिलेंगे, विराजमान है। गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा कृष्ण के चरण चिन्ह, हस्त चिन्ह, पाद चिन्ह जो देखता है वो इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेकर नहीं आएगा, ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो वहां पर आपको राधा रानी के साक्षात चरण का दर्शन मिलेगा। ऐसा सुंदर स्थान है राधा रानी का, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई है। भानुगढ़ में कृष्ण भगवान हमेशा अलग 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 भेष बदल के आते हैं। कभी कंगन बेचने वाली बनकर आते हैं, कभी मेहंदी लगाने वाली बनकर आते हैं, कभी ढाड़ी यानी झाड़ू वाली बनकर आते हैं, कभी मालिन यानी फूल बेचने वाली बनकर आती है, और तरह तरह के छद्म भेष धारण करके कृष्ण भगवान वहां पर राधा रानी को मिलने आते हैं। क्योंकि कड़ा पहरा होता है, कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता है, तो वो कड़े पहरे को लांग कर श्यामा सती बनकर कृष्ण वहां प्रवेश करते हैं। ये समय तो बहुत कम है अपने पास, समय तो समाप्त हो गया है, तो फिर भी आपको विलासगढ़ की एक अच्छी कहानी बताते हैं। नहीं, विलासगढ़ नहीं, दानगढ़ की कहानी बताते हैं। तो दानगढ़ में कृष्ण भगवान दान मांगते हैं, भिक्षुक होकर याचक बनकर राधा रानी के पास दे दो दे दो, प्रेम दे दो, दर्वती दे दो, प्रणय दे दो, ऐसे दान मांगते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं, सबसे पहला दान जो है वो अपना घूंघट हटा दो और अपना चेहरे का दर्शन का दान दो, ताकि मेरा हृदय का जो हृदय की जो प्यास है वो बुझ जाए। और बाद में कहते हैं कि प्रेम दो, रति दो। तो गोपियां कहती, कैसे तुम व्यक्ति हो, दूसरों का छीन छीन के लेते हो, दूसरों के घर में चोरी करते हो, तुमको तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे दादाजी को हमारे दादाजी ने बड़े प्रेम से अपना राजदंड दिया, प्रेम के वश, मित्रता के वश। तो तुम्हारे पास क्या था तुम्हारे कुल में? हमारे दादाजी ने प्रेम से मित्रता के कारण तुम्हारे दादाजी को राजदंड दिया नंदगांव का, इसलिए तुमको वहां का राज्य प्राप्त हुआ, और अब तुम यहाँ पर आकर चोरी करते हो, माखन चोरी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कैसे तुम देखो कितने कितने पाप करते हो, तुम कितने धर्म विरुद्ध काम करते हो, इसलिए तुम्हारा रंग काला हो गया है इस पाप की वजह से। कहाँ जाओगे ये पाप धोने के लिए, क्या करोगे पाप धोने के लिए? ऐसे कृष्ण को निंदा कर रहे हैं सब गोपियां मिलकर, वो बेचारे हाथ जोड़कर प्रेम का दान मांग रहे हैं, हाँ उसको एकदम मजाक कर रहे हैं उसका। तो कृष्ण क्या कहते हैं, तुम मुझे पापी समझते हो, हाँ दूसरे का धन छीनने वाले समझते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज गौ रज गंगा में स्नान करता हूँ। मतलब क्या, जब गौएं चलती है ना गौचारण करते करते, तो उनके पैर से ना धूल उड़ती है, पैर को स्पर्श होकर धूल उड़ती है, और वो धूल में पूरा रजो स्नान करते हैं। तो कहते हैं कि इससे बड़ा कोई स्नान है क्या, बोलो आप मुझे, पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई स्नान है, गौ रज में मैं रोज स्नान करता हूँ तो मुझे कौन सा पाप छू सकता है, बताओ। उसके बाद में मैं गौओं का रोज नामस्मरण करता हूँ, हे काली, हे धूमर, हे गोरी, हे तिलकिनी, हे घुंघटिनी, ऐसे बात करता हूँ मैं, हर गाय को नाम से पुकारता हूँ। अरे जो अपने गाय को नाम से पुकारता है, उनके नाम से उनका जप करता है, उनको कौन सा पाप छू सकता है, हाँ सारे तीर्थ जो है गौ के खूर में है, और उस गौ को खूर को लगते हुए जो धूल उड़ती है उसमें सारे तीर्थों का निवास है, मैं हर रोज इन सब तीर्थों में मैं स्नान करता हूँ, और ये गाय के गोबर में मैं खेलता हूँ तो गोबर में लक्ष्मी का निवास है, इन दोनों की कृपा मुझ पर है, इससे मुझे कोई पाप छू नहीं सकता है, और मैं दिन ब दिन हमेशा शुद्ध और शुद्ध होते जाता हूँ। इस तरह से वहां पर उनका संवाद होता है। और एक लीला है वहां पर दानगढ़ पे, की वहां पर एक ब्राह्मण आता है और वो उसको तीन लड़कियां होती है, और वो कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वहां पर राधा रानी के साथ में खेलते रहते हैं। तो ब्राह्मण आकर रोता है, वो कहता है अरे मुझे दान दे दो, मैं तीन तीन लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, बहुत गरीब हूँ, रोते रहता है। तो कृष्ण के पास आता है और कृष्ण कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा आपको। तो वो कहते हैं कि कुछ तो दो बेटा, कुछ तो दो, मेरी बहुत अवस्था खराब है। तो कृष्ण बहुत सोचते हैं कि मेरे पास क्या है। बाद में उनको याद आता है कि हाँ अरे मेरे पास राधा रानी है, राधा रानी है मेरे पास। तो राधा रानी को बुलाते हैं, वो दान देते हैं उसको ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण अभी राधा रानी को प्राप्त करने के बाद और जोर से रोता है, बोलते पहले तीन थे अभी चार हो गए, तीन का विवाह करने की समस्या थी, अभी चार की विवाह कैसे करूंगा मैं। तो कृष्ण को दया आती है, फिर वो क्या करते हैं, सब गोपियों को कहते हैं राधा रानी को एक तराजू में बिठाओ एक पलड़े में, और आपके जितने अलंकार हैं सब उतारो, और राधा रानी के वजन के जितना वजन होगा उतने अलंकार हम ब्राह्मण को दान में देंगे। तो सब गोपियां अपना कृष्ण के प्रसन्नता के लिए अपना सारा जो गहना त्याग कर देते हैं और वो पलड़े में डालते हैं। सब कुछ डालने के बाद भी राधा रानी का पलड़ा नीचे और गहनों का पल्ला ऊपर, अभी क्या करें? तो फिर राधा रानी जाकर तुलसी पत्र रखती है उसके ऊपर और पलड़ा इक्वल हो जाता है। हाँ, और फिर वो सारे जो जेवर है, अलंकार है, ब्राह्मण को दान देते हैं। ब्राह्मण संतुष्ट होता है और अपने आनंद से चला जाता है वहां पर। तो वो दानगढ़ जो है वो बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर भगवान रास रचाते हैं, वहां पर झूला है, भगवान झूला झूलते हैं झूले के मौसम में। और उस मंदिर में एक विशेष दर्शन है, वहां पर जो कृष्ण है वो राधा रानी है, वो जो राधा रानी है वो कृष्ण है। वो जो साकलीपुर में लीला हुई थी, मटका फोड़ लीला, उस समय उन्होंने दंड दिया था उनको कि हम आपको छोड़ेंगे। वो राधा रानी और गोपियों ने उनको साकलीपुर में अरेस्ट किया था। तो वो अरेस्ट जब किया था, उनकी चोटियां सब पेड़ को बांध दी थी, और जब जो रोने लगे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम छोड़ो छोड़ो करके, तब उन्होंने उनको एक वादा किया था कि देखो कल तुम लोग सखियां बनकर आओगे, तुम्हारे सरदार जो है वो गोपी बनकर आएंगे, राधा रानी बनकर आएंगे, और हम सब लोग गोपाल बनकर आएंगे, हमारी राधा रानी कृष्ण बनकर आएंगी, और तुम्हें साकलीपुर पर रोकेंगे, सब मटका वटका भर के लेके आना, हम तोड़ के सब दान ले लेंगे आपसे। तो ये जो लीला है जिसमें कृष्ण भगवान गोपी बनकर राधा रानी बनकर आए थे, चुनरी ओढ़कर सर पे मटका लेकर, और वहां से डंडा लेकर राधा रानी कृष्ण बनकर आई थी, और डंडे से उनके मटके फोड़े थे। तो वो लीला के उपलक्ष्य में इस मंदिर में दानगढ़ में जो दान बिहारी जी हैं वो राधा रानी हैं, जो कृष्ण बनकर आई हैं, उनके गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, और जो राधा रानी है वो कृष्ण है। ये अद्भुत दर्शन वहां पर है। और यहाँ इस पर जो भी रास रण रचाया था भगवान ने उस मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में रास मंडल पे, तो ललिता जी को बहुत प्यास लगी थी, तो उस पत्थर में से अपने वेणु से कृष्ण भगवान ने कुआं बनाया था, इसका नाम है ललिता कूप। आज भी वहां विराजमान है, बहुत सुंदर पत्थर के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, और वो कुआं है जहाँ पर मीठे पानी का कुआं ललिता जी के लिए बनाया था, और उनको ठंडा जल उन्होंने रास के बाद में पिलाया था। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं भानुगढ़ में। कृष्ण भगवान कैसे तरह तरह के रूप धारण करके आते हैं राधा रानी को मिलने के लिए, कभी गोप देवी बनकर आते हैं, कभी श्यामा सखी बनकर आते हैं, कभी बंजारन बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी सन्यासी बनकर आते हैं, कभी सिद्ध बाबा बनकर आते हैं, कभी बता दिया आपको मैंने बहुत सारा। तो ये बहुत लंबी लंबी लीलाएं हैं, उसके लिए बहुत घंटे लगेंगे, लेकिन बरसाना एक चटपटा धाम है। जो वृंदावन में होता है, जो मथुरा में होता है, जो अलग अलग वनों में होता है, उसमें और बरसाने की लीलाओं में बहुत फर्क है। कारण क्या उसका? कि बरसाना धाम जो है उसमें जो अंतरंग लीलाएं हैं वो संपन्न होती है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स आर परफॉर्म्ड ओवर देयर। और उसके लिए वहां पर कोई राक्षस का आना संभव नहीं है, क्योंकि वो लीलाएं इतनी उत्कट होती है कि राक्षस बीच में आ ही नहीं सकता है टू इंटरप्ट। इसलिए वो जब कंस वहां पर आया था काले घोड़े पर बैठकर, तो राधा रानी उसको स्त्री बना दिया था, राधा रानी ने उसको गोपी बना दिया था। 6 महीने के लिए कन्या बना रहा हो, उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया था। 6 महीने तक कंडे लिपवाए उससे, बेचारा कंडे थापते रहा 6 महीने। राजा दिग्विजय राजा महाराज कंस, सब लोग टैक्स चुकाते थे उसको जाकर ग्वाल बाल। तो इसके बहाने उन्होंने कंस को चेतावनी दी थी और स्त्री शरीर से मुक्त कराया था, और चेतावनी दी थी दोबारा आओगे ना तो जिंदगी भर के लिए तुम कन्या बना के रखूंगी मैं यहाँ पर। इसलिए बरसाना नंदगांव जावट क्षेत्र में कोई कंस का राक्षस या कोई कंस जो है वो कभी भी नहीं आया था, इसलिए वहां पर इतनी उत्कट और प्रेममयी सुंदर सर्वोत्तम लीलाएं संपन्न हो सकी। राधा रानी की ये महाप्रतापी लीलाएं हैं, माँ राधा रानी के महाप्रताप का ये परिणाम है कि कोई भी राक्षस वहां पर आकर कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि तो लीलाएं वहां पर ऐसी होती है चटपटी, जहां पर स्वयं कृष्ण जो गोपी बनकर प्रवेश कर रहे हैं, वो चूड़ियां बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, अभी मेहंदी लगा रहे हैं हाथों को, कभी किसी को पाओ में महावर लगा रहे हैं, कभी हाथ देख रहे हैं, हस्त सामुद्रिक भविष्य देख रहे हैं किसी का गोपी का, ऐसे ऐसे रूप धारण करके आते हैं। तो इस लीला में कैसे राक्षस आ सकता है? ये तो बहुत अद्भुत छटपट लीला है। तो आइए राधा रानी के इन लीलाओं को समझने के लिए हमको एक अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी लीलाओं का रहस्य जो है वो गुरु जी की आज्ञा के पालन में छुपा हुआ है। ये तो लगता है अच्छा अच्छा मनोरंजन के लिए अच्छा अच्छा चटपटी लीलाएं हैं, लेकिन इसमें जो प्रेम का सार है वो अगर समझना है तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के बाद ही उनकी कृपा होगी, तब ये सार समझ में आएगा। सभी आध्यात्मिक रहस्यों का सार जो है वो गुरु जी की आज्ञा का पालन है। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते पे कोरी ऐक्य आरना कोरी हो मुने आशा, ये हमारे पूरे स्पिरिचुअल लाइफ का सार वाक्य है। इसको हमको अगर समझ में आया, नाम को ये वाक्य समझ में आया कैसे उसको अमल में लाना है, ये अगर हमने 100% अमल में लाया, चैंट अटेंटिवली गुरु जी की आज्ञा है वो हमने किया, फॉलो फोर रिलेटिव प्रिंसिपल चार नियम का पालन करो ये हमने दिल से किया, भक्तों के दासों के दास बनकर रहो, वैष्णव सेवा करो ये हमने पालन किया, अष्ट विग्रहों की पूजा की, शास्त्रों का अध्ययन किया, भक्तों की सेवा की, खास करके भक्तों की सेवा की, ये गुरु जी का आदेश हमने पालन किया, तो ये सारी लीलाओं का अंतर्गत रहस्य जो है, राधा रानी की कृपा का जो अद्भुत रहस्य है वो हमारे हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य अनुभूति हृदय प्रकाशित, दिव्य साक्षात्कार हृदय प्रकाशित, ये उसकी शक्ति है। कभी कभी ना बहुत बड़ी बड़ी चीजों का रहस्य बहुत सिंपल वस्तु में होता है, तो लगता है तो बहुत मुश्किल है कि कैसे समझ में आएगा, लेकिन ये गुरु जी की आज्ञा पालन करने मात्र से ही एक दिन स्वयं स्फूर्त हमारे हृदय में ये सारे साक्षात्कार प्रकट होंगे, कि लीलाओं का रहस्य प्रकट होगा, कि प्रेम का रहस्य प्रकट होगा, लीलाएं भी प्रकट होगी, साक्षात्कार भी होगा। तो आइए इस राधा अष्टमी के पावन दिवस पर हम सभी ये प्रण करें कि राधा रानी आप हमें ऐसी कृपा करें कि हमें ऐसी शक्ति दें कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम करेंगे और उसमें सफल रहेंगे, प्रयास करेंगे, हमें शक्ति देना, बल देना, कृपा देना, जिसके कारण हम अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर सकेंगे और फिर उसी से हमें राधा रानी की कृपा का रहस्य और लीलाओं का रहस्य समझ में आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माफी चाहता हूँ थोड़ा अधिक समय लिया, कुछ तो प्रश्न होंगे तो आपके होस्ट उसको एक एक करके जितना समय आपके पास है उतना पूछ सकते हैं। यस दर्शन दर्शन देकर बोलना, दर्शन देकर, हाँ बोलिए प्रभु जी, दर्शन दीजिए और बोलिए।
Thank you so much, Prabhuji. We are very grateful from practical spirituality that you have given us your association, and it was very maturing to us, and it was not just the lecture, but you also gave very important instructions between the lectures that in the start also how shall we near this material
part. वो कैसा है बताए, वो जो लीला के बीच में होता है ना, वो इससे डाइजेस्टिव, ताकि आपको जलेबी खाएंगे तो वो पचनी भी चाहिए ना, इसलिए बीच में वो मसाला देते हैं हजम करने के लिए। थैंक यू। गुड, लेट देम डाइजेस्ट एंड लेट देम मेडिटेट ऑन व्हाट दे हर्ड, दैट इज गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सो आई टेक योर लीव प्रभु जी, thank you so much, thank you for all the practical spirituality devotees, all those who have assembled here, many of them also on YouTube. I'm grateful to all of you, wishing you a very very happy remaining Radhashtami with a day, very very happy, and may be able to receive the mercy of Radharani with humble attitude and prayerful mood. Thank you so much. Hare Krishna.